الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الحمدللہ نو روزہ محافل محرم کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے اور ابتدا میں مختلف عنوانات کے تحت گفتگو کی گئی اور آج شہزادہ رسول جگر گوشہ بتول سردار نوجوانان جنت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی بے مثال شہادت بے مثال صبر اور استقلال اس کے متعلق بیان کریں گے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ارشاد ربانی ہوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والوں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں قتل کر دیے جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں انہیں دیکھنے کا شعور نہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو اس کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو دوسری آیت अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, और वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़िकून, उन्हें अपने रब की तरफ से रिज़क भी दिया जाता है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाह, और वो अल्लाह की इस अता पर बहुत ज्यादा खुश है। शहीद कौन है, शहीद किसे कहते हैं? हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, शहीद वो शख्स है जो अल्लाह ताला के दीन की सेहत और सदाकत की कभी दलील और बुरहान से और कुव्वत और बयान से और कभी शमशीर और सनान से गवाही दे, उसे कहते हैं शहीद। काबिले गौर बात यह है, पहली आयत में फरमाया मुर्दा ना कहो, हो सकता था कि कोई दिल में ख्याल कर देता कि ये मुर्दा है, अल्लाह ने फरमाया ना मुर्दा ना कहो, तो दिल में सोच लेता कि जो मर गया खत्म हो गया दफन कर दिया गया वो तो मुर्दा है, जबान से ना कहता लेकिन दिल में सोचता। इसीलिए खालिक़े कायनात ने दूसरी आयत मुबारक नाज़िल फरमा दी, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना कर, तुम्हारी जबानों पर भी पहरे लगा दिए, तुम्हारी सोच पर भी पहरे लगा दिए, ये ऐसे जिंदा हैं कि ना इन्हें मुर्दा कह सकते हो ना मुर्दा गुमान कर सकते हो। गौर कीजिए कितनी बड़ी बात। अच्छा मुशाहिदा तो कहता है कि मुर्दा है भाई, जिसका जिस्म तीरों से छन्नी हो गया, हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला ने सीना चीरा गया, कलेजा निकाला गया, चबाया गया, नाक कान काट दिए गए, लाश का मुसला किया गया, अजीब कैफियत हो गई, दफन कर दिया गया, कुरान कहता है जिंदा है, कुरान कहता है जिंदा है। और वो काफिर जो बाजारों में चल रहे हैं खरीदो फरोख कर रहे हैं, कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुर्दों को आप कलामे रब्बानी नहीं सुना सकते। अब कैसी अजीब बात, जो बाजारों में चल रहा है कुरान ने कहा मुर्दा है, खरीदो फरोख कर रहा है कुरान कहता है मुर्दा है, सलामो कलाम कर रहा है कुरान कहता है मुर्दा है, और वो मुसलमान जो तलवार लेकर मैदान में उतरा अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हुआ उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, उसकी लाश का मुसला किया गया, दफन कर दिया गया, कुरान कहते हैं जिंदा। अजीब बात है ना, आंख कुछ कहती है, अकल कुछ कहती है, कुरान कुछ कहता है। भाई अगर किसी से पूछे तो यही कहेगा ना भाई मुर्दा है, जब भी तो दफन किया गया, किसी जिंदा को कभी दफन किया नहीं, कुरान ने कहा नहीं। मेरे बुजुर्गों हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा मुशाहिदा गलत हो सकता है, कुरान गलत नहीं हो सकता। तो फिर क्या किया जाए, आप तो ये कह रही है इसे दफन कर दिया गया मुर्दा है, और कुरान कहते हैं नहीं वो जिंदा है। यहीं से पता चला कि जिंदगी मुस्तफा की वफादारी का नाम है, जिंदगी मुस्तफा की वफादारी का नाम है। काफिर चल रहा है कुरान ने कहा मुर्दा है, मोमिन शहीद हो गया कुरान ने कहा जिंदा है। यहीं से पता चला कि जिंदगी मेरे रसूल की वफादारी का नाम है, जो रसूल का गद्दार है वो चल रहा है लेकिन मुर्दा है, जो वफादार है जमीन के अंदर चला गया कुरान कहते हैं जिंदा, जिंदा है। तो जिंदगी रसूल की वफादारी का नाम है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नबी से वफादारी करो, गद्दारी मत करो, वफादारी करो। देखो जिन्होंने वफादारी की आज तक जिंदा, सिद्दीक फारूक उस्मान वाली अबू बकर उमर, कितने सहाबा अहले बैत सब नबी के वफादार, सब जिंदा। तो शहादत एक ऐसा अजीम मनसब है, मकाम है, जो खुश नसीब लोगों को हासिल होता है। इसीलिए शायद ने लिखा, शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सादत की, वो खुश किस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। शहीद इस दार फानी में हमेशा जिंदा रहते हैं, जमी पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं, जमी पे चांद तारों की तरह ताबिंदा रहते हैं। तो शहीद कौन है?
कौन है?
जिंदा है, अपनी कब्र में जिंदा है। इसलिए कि ये हमने नहीं कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया। अब आइए, सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुम, ये दो रसूल के शहजादे जिनके लिए सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब आल जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार। हम आपको कल बता चुके हैं कि बड़े शहजादे के हिस्से में शहादत सिर्री का फायदा है, जिसके माना पोशीदा, और छोटे शहजादे के हिस्से में शहादत जहरी का फायदा है, जिसके माना ऐलानिया। जहर के असर से कोई मर जाए तो शहीद है, लेकिन शहादत सिर्री है। दीवार के नीचे दब के मर जाए, जल कर मर जाए, डूब कर मर जाए, कोई जानवर खा ले, किसी हादसे में शहीद हो जाए, शहीद है, मगर शहादत सिर्री। और तलवार लेकर मैदान कारजार में उतरता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ता हुआ अपनी जान कुर्बान कर देता है, शहीद है, मगर शहादत जहरी। तो इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के हिस्से में शहादत सिर्री का फायदा आया, वो आप कल सुन चुके हैं, जहर के असर से उनकी शहादत हुई। अब छोटे से शहजादे सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला उनके हिस्से में शहादत जहरी का फायदा, जिसके माना ऐलानिया। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम आली मकाम की शहादत की खबर उस वक्त दे दी थी जब वो बिल्कुल कमसिन थे, दूध पीते बच्चे, क्योंकि उनके हिस्से में शहादत जहरी का फायदा है ना, जिसका माने ऐलान सरकार ने पहले बता दिया। तो मोतबर रिवायात इस सिलसिले में वारिद हुई हैं, हम चंद एक आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहली रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद इस सरजमीन यानी कर्बला की तरफ उसमें कत्ल कर दिया जाए, और वहां की मट्टी भी जिब्रील ने लाकर मुझे दी है, और उन्होंने मुझे बताया कि यही उनके लेटने की जगह है, यानी मदफन उनका वही है। खसाइसे कुबरा में ये रिवायत मौजूद है। दूसरी रिवायत हजरत उम्मुल फजल बिनते अल हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि एक दिन मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को लेकर हाजिर हुई, छोटे से दूध पीते बच्चे गोद में लेकर मैं हाजिर हुई, मैंने हुसैन को आपकी गोद में दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादे से मोहब्बत फरमाने लगे, जैसे कि बच्चे को हम गोद में लेते हैं ना, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। फरमाती मैंने देखा अचानक हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं हैरान हूं कि सरकार ने अभी हुसैन को लिया, मोहब्बत फरमा रहे थे, आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने की वजह क्या हुई? आका ने फरमाया मेरे पास अभी अभी जिब्रील आए और उन्होंने मुझे खबर दी है अन करीब मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगी, और उन्होंने मुझे उस जमीन की थोड़ी सी सुर्ख मट्टी भी दी है और कहा ये मट्टी उस दिन खून हो जाएगी जब हुसैन शहीद किए जाएंगे। इस रिवायत को अल मुस्तदरक, मिशकात और दीगर कुतुब में बयान किया। तीसरी रिवायत उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि हसन और हुसैन दोनों मेरे घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेल रहे थे। जिब्रील अमीन नाज़िल हुए और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आपकी उम्मत आपके इस बेटे हुसैन को आपके बाद कत्ल कर देगी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां की थोड़ी सी मट्टी वो भी लाकर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मट्टी को सूंघा, फरमाया इसमें रंजो बला की बू है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपने सीने से चिमटा लिया। फिर सरकार रोए और फरमाया ऐ उम्मे सलमा जिस दिन ये मट्टी खून हो जाए समझ लेना मेरा ये बेटा हुसैन कत्ल कर दिया गया। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मट्टी को एक बोतल में रख लिया, रोजाना उसे देखती थी और फरमाती थी जिस दिन ये खून हो जाएगी वो दिन बड़ा अजीम होगा। इस रिवायत को भी बहुत सी कुतुब ने बयान किया। इन तीन रिवायतों से ये साबित हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का इल्म था। खुद हजरत मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को भी इल्म था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद किए जाएंगे, और उसकी दलील ये है कि हजरत याहिया बिन हजरमी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं सफरे सिफीन में हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के साथ था। जब आप नैनवा के मकाम पर पहुंचे, नैनवा जो है ये करबला का नाम है दूसरा, नैनवा के मकाम पर पहुंचे तो हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम ने पुकारा, फरमाया ए अबू अब्दुल्लाह फुरात के किनारे सबर करना, अबू अब्दुल्लाह फुरात के किनारे सबर करना। अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन की कुन्नियत, अबू अब्दुल्लाह फुरात के किनारे सबर करना, करबला में दरिया है दरिया फुरात। फरमाते मैंने पूछा ये क्या, वहां तो कोई नजर नहीं आया। तो हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि जिब्रील ने खबर दी है हुसैन फुरात के किनारे शहीद कर दिए जाएंगे, और मुझे वहां की थोड़ी सी मट्टी भी लाकर दी। इससे ये पता चला कि हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जानते थे कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी जानती थी कि हुसैन शहीद होंगे, ये सब जानते थे, लेकिन किसी ने दुआ नहीं की कि ऐसा ना हो। क्या किसी ने दुआ की कि ये मुसीबतें ना आए, ये परेशानियां ना हो, इनको भूखा प्यासा ना रहना पड़े? नहीं, ये लोग साहिबाने मकामे रजा थे, जो अल्लाह की रजा वही हमारी रजा। मर्द ये मौला अजहमा औला, जो अल्लाह की रजा वही हमारी रजा। हजरत अली ने दुआ नहीं की, हजरत खातून जन्नत ने दुआ नहीं की, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की कि ये ना हो। दुआ की, लेकिन क्या दुआ की? ऐ अल्लाह हुसैन को इस्तेकामत अता कर, اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، اے اللہ حسین کو حوصلہ عطا فرما۔ یہ دعائیں کی ان لوگوں نے، اور یہ دعائیں قبول ہوئیں، اور امام علی مقام صبر اور استقلال کا پہاڑ بن گئے۔ کیسے مصیبتیں آتی رہی، سب اپنے اوپر کھیل۔ جو چیز یقینی ہوتی ہے اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ امام علی مقام کی شہادت یقینی تھی، سرکار نے بشارت دے دی تھی۔ اب یہ میں نے تو صرف تین روایتیں بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں، روایتوں میں جو مستند ہیں، یہ خبر ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کو، صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے جائیں۔ سب جانتے تھے، اب یہ بات تو کنفرم تھی، مستند تھی، تو اس کے آثار پیدا ہونا شروع ہوئے۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا۔ اس کو وہ اپنی زندگی میں نامزد کر چکے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی جگہ بیٹھ گیا، اس کو تین شخصیات سے خطرہ تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تینوں شخصیتیں ایسی تھیں جو اس کی حکومت کے لیے نہایت خطرے کا باعث۔ وہ دونوں تو صحابہ کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، وہ دونوں صحابیوں کے بیٹے تھے، اور امام علی مقام تو خود اولاد رسول۔ اگر وہ دونوں مخالفت کرتے تب بھی اس کی حکومت خطرے میں، اور امام علی مقام کرتے تو پھر تو خطرہ ہی خطرہ تھا۔ ظاہر شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطور، سردار نوجوانان جنت، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، مدینہ طیبہ ایک خط لکھا گورنر مدینہ کو، اس کا نام تھا ولید بن عقبہ، اور اس خط میں لکھا کہ ان تینوں کو بلاؤ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت ان سے لے لو، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ سر قلم کر، کوئی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس نے خط لکھا یزیدی۔ گورنر بڑا پریشان کہ تینوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ ان کو اس طرح زور دے کر، دباؤ ڈال کر بیعت کرانا مشکل تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنا قاصد بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ امام اس وقت مسجد نبوی میں تھے اور ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تھے، یہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گورنر کا قاصد آیا ولید بن عقبہ، آپ دونوں کو گورنر نے بلایا ہے، فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ قاصد چلا گیا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا امام یہ وقت ایسا ہے دوپہر کا کہ گورنر کسی سے ملتا نہیں اور اسی وقت ہمیں بلایا گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی اہم بات ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے اس کو لکھا ہوگا اور ہمیں بلایا گیا صرف اسی لیے کہ ہم بیعت کریں۔ انہوں نے کہا بالکل میرا گمان بھی یہی ہے، پھر کیا کریں؟ امام علی مقام نے فرمایا میں کچھ نوجوانوں کو لے کر جاتا ہوں، اگر معاملہ بگڑے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ عبداللہ ابن زبیر تو چلے گئے اور امام علی مقام چند نوجوانوں کو لے کر گورنر کے پاس پہنچے۔ وہ نوجوان تلواریں ان کے پاس تھیں، आपने उनको बाहर खड़ा किया और खुद अंदर तशरीफ ले गए। फरमाया अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो तुम लोग अंदर दाखिल हो जाते, समझ लेना कुछ गड़बड़ है, और अगर ना हो तो जब तक मैं ना हूं तुम यहीं पर ठहरे, जब मैं आ जाऊंगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक, अंदर गए। वलीद बिन उकबा जो गवर्नर मदीना था वो बैठा था, उसके साथ मरवान भी बैठा था जो अहले बैत का दुश्मन। उन्होंने जाते ही हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला के इंतकाल की खबर सुनाई। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, आपने ताज़ियत की। फौरन गवर्नर ने कहा कि यजीद तख्त नशीन हो चुका है, अमीर माविया ने अपनी जिंदगी में उसे नामजद कर दिया था, तो लिहाजा आप उसकी बैत कर दें। इमाम ने फरमाया पहली चीज तो ये है कि मुझ जैसा आदमी ये छुप कर बैत करे ये मुनासिब नहीं, आप लोगों में आकर ऐलान करें, अगर सब लोग बैत करेंगे तो देखा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि यजीद फासिक और फाजिर है, उसके हाथ पर बैत करना वैसे भी जायज नहीं। और तीसरी बात ये कि उसका तकर्रुर खुलफाए राशिदीन के तकर्रुर के खिलाफ हुआ है। आपके नजदीक ये पहली शख्सी हुकूमत थी, इसलिए आप उसको जायज नहीं समझते थे। फरमाया सबके सामने ऐलान करें, जब सारे मुसलमान जमा होंगे फिर देखेंगे। ये कहकर आप वहां से उठ गए। मरबान ने कहा इनको जाने मत देना, अभी इनको पकड़ लो, बैग ले लो, नहीं लेते सर कलम कर दो। आपने मुड़कर कहा तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे क्या खत्म करेगा, मैं जा रहा हूं, हिम्मत हो तो रोक कर देख ले। वलीद बिन उकबा खामोश रहा। मरवान ने कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की, इन्हें छोड़ दिया, अब तुम उस वक्त तक इन पर काबू नहीं पा सकते जब तक के कसीर तादाद में लोग खतर ना हो जाए। उसने कहा अजीब बात है, तुम मुझे मशवरा दे रहे हो कि इनको रोकूं, बैत करें तो ठीक है वरना कतल कर दूं, नवासे रसूल के खून से अपने हाथ में रंगीन करूं, ये मुझसे नहीं हो। इमाम अली मकाम वहां से तशरीफ ले आए। अब अजीब सूरत हाल थी, मदीने तैयबा में रहना बड़ा मुश्किल था। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के पास गवर्नर के कासिद आते रहे, वो उनको टालते रहे, सुबह आऊंगा फिर कहते शाम को आऊंगा, और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अपने अहले बैत के पास आए, सारी सूरत हाल बताई कि यजीद की तरफ से ये हुक्मनामा आया है कि उसकी बैत की जाए, और हमारे नजदीक वो फासिक और फाजिर है, उसकी हुकूमत पहली शख्सी हुकूमत है, उसका तकर्रुर खुलफाए राशिदीन के तकर्रुर के खिलाफ हुआ, ज्यादा हम बैत नहीं करेंगे। सब ने ये कहा कि ठीक है फिर आप ऐसा करें कि यहां से हिजरत कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो तो फिर छोड़ेगा नहीं। आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया हजरत अली करम अल्लाह तआला वजह करीम की दूसरी अहलिया से जो फर्जंद थे मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला, उनसे आपने मशवरा किया, उन्होंने भी ये कहा कि भाई आप यहां से हिजरत कर जाएं, किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, लेकिन आप एक जगह ना रहें, एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल होते रहें, और जब हालात साजगर हो तो आप मदीने वापस आ जाएं। फरमाया मैं तो मक्के जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये तो बेहतरीन जगह है, मक्के से बेहतर कोई जगह नहीं, वहां पर अहले बैत के मुहिब हैं, सारे मानने वाले हैं, अब वहां चले जाएं। बिल आखिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला और दीगर अहले बैत जिनसे इमाम अली मकाम ने मशवरा किया, तो फिर ये तय पाया कि अब मदीने तैयबा से मक्का मौजमा हिजरत कर लेनी चाहिए। आपने अपने अहले वयाल को हुक्म दे दिया कि सब सामान सफर बांध लो और तैयारी कर लो, सबसे आखिर में अपने नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजे अनवर पर हाजिर हुए आखिरी सलाम करने के लिए। अलविदा कहने के लिए और इजाजत हासिल करने के लिए कि मैं अब मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सा गौर करें कि इमाम के दिल की क्या कैफियत होगी। वो मदीना जहाँ वो उनकी विलादत हुई, जहाँ उनका बचपन गुजरा, जहाँ उनकी जवानी गुजरी, जहाँ उनके वालिद, उनके वालदा, उनके नाना सब वहीं, सारे रिश्तेदार वहीं थे। उस शहर को छोड़ना इमाम आली मकाम के लिए कितना मुश्किल था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि जाना नागुजीर था। बिलाकर आपने फैसला कर लिया और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के रौज़े अनवर पे हाजिर हुए। जो कुछ उन्होंने कहा शायद ने उसे अपने अंदाज में बयान किया। वो तो हम बयान नहीं कर सकते कि जो कुछ उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया हो। शायद लिखता है, मजारे मुस्तफा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखरी करने सलाम आए, कहाँ रोकर सलामे ताजदारे आलमे इमकान, सलामे सैयदे आलम सलामे सरवरे ज़ीशान। जरा देखो तो चेहरे को उठा कर गोशे दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग है तैबा की अब गलियां, जरा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा, जरा देखो तो अहले बैत पर है सख्तियां क्या क्या, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार खतरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन मन के नरगे में, हमारी बेकसी और बेबसी की लाज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे में राज रख लेना, हमें नजरों में अपनी साहिबे में राज रख लेना, बस अब ऐ क़िबला दी मुझको जाने की इजाजत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुख्सत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुख्सत हो। गौर कीजिए इमाम आली मकाम मुकद्दस बाबरकत शहर जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था। जाहिर है इंसान जहाँ पैदा होता है उस मोहल्ले से, उस शहर से मोहब्बत करता है, उस वतन से मोहब्बत करता है। इमाम की विलादत वहीं हुई, बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, सब कुछ वहीं पर, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि वो शहर छोड़ना उनके लिए नागुजीर हो। आखिरी सलाम किया अपने नाना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होकर और फिर अपने अहले वयाल को लेकर रवाना हुआ। मंजिल ब मंजिल सफर करते 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 मक्का मुअज्जमा पहुंचे। इधर आपके पहुंचने से पहले अहले मक्का को इत्तला हो गई कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। वो खुशी से झूमने लगे, वो तो सारे मोहब्बत करने वाले थे, अहले बैत के आशिक थे, हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करते थे। सब के सब रोजाना रास्ते में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं हुसैन आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के नवासे आ रहे हैं, फातिमा तो जहरा के लख्त जिगर आ रही हैं, अली उल मुर्तजा के नूरे नजर आ रहे हैं, सब इंतजार कर रही हैं। इमाम अपने अहले वयाल के साथ मंजिल ब मंजिल सफर करते करते कई दिनों में मक्का मुअज्जमा पहुंच गए। अहले मक्का ने आपका इस्तकबाल किया और उनकी क्या कैफियत थी? अहले मक्का ने कहा, मरहबा सैयदे आलम के पिसर आए हैं, सैयदा फातिमा के लख्त जिगर आए हैं, नखले बुस्ताने नबुवत के समर आए हैं, जिनसे रोशन है जहां वो कमर आए हैं। वाह किस्मत के चरागे हरम आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक हुसैन आए हैं, ए मुसलमानों मुबारक हुसैन आए हैं। सब खुश हो गए, इमाम अली मकाम आ गए, फातिमा ज़हरा के नूरे नजर, अली के लख्त जिगर आ गए। सर आंखों पर बिठाया, इस्तकबाल किया, घर में ले आया, यहां पर आकर सुकून हुआ। वहां जो हालात थे कि बार बार गवर्नर की तरफ से कासिद आता था कि चले आकर बैठ करें, वो सिलसिला यहां नहीं। अहले बैत ने भी ये कहा था कि भाई मक्के चले जाएं, और अल्लाह फरमाता है, वमन दखलहू काना आमिना, जो हरम में आ गया वो अमन में आ गया। मक्का अमन की जगह है, हरम अमन की जगह है। इमाम आजम मकाम पहुंच गए, अब यहां पर इत्मीनान और सुकून के साथ रहने लगे। यहां कोई मकसद नहीं था। उधर अहले कूफा को ये इत्तला मिल गई कि इमाम अली मकाम मदीने तैयबा से मक्का मुअज्जमा पहुंच गए। इन्होंने फौरन खतूत भेजना शुरू कर दिया। एक खत आया, इमाम आप कूफे तशरीफ ले आए, हम आप पर कुर्बान हैं, निसार हैं, हमारी जान कुर्बान है, हम सब बैत करने के लिए तैयार हैं, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, आप तशरीफ लाइए, आपकी बैत करेंगे। फिर दूसरा खत आता है, अगर आप नहीं आए तो कयामत में हम अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की बारगाह में कहेंगे, हमने तो हुसैन को बुलाया था, ये नहीं आए, इसीलिए हमने फासिक और फाजिर से बैत कर ली। फिर तीसरा खत आया, मुख्तलिफ मजामीन के खतूत इमाम आली मकाम की तरफ आते रहे। कहां पर? मक्का मुअज्जमा। अच्छा, फिर सिर्फ खतूत नहीं आए, वफूद भी आया। वफ़ की सूरत में 8-10 आदमी मिलकर आ गए, 5 आदमी मिलकर आ गए, 6 आदमी मिलकर आ गए, और आकर अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं, हम आपके मुती हैं, फरमा बरदार हैं, आप पर निसार हैं, कुर्बान हैं। आपने फरमाया, अच्छा बस आप किसी तरह कूफे आ जाए। आपने फरमाया, अच्छा ठीक है, मैं गौर करता हूं। उन खतूत के जवाब में भी यही कहा, और जो वफूद आए उनसे भी यही कहा। अब जाहिर है आप जानते हैं कि जब एक आदमी को इतना फोर्स किया जाए कि खतूत भी आ रहे हैं, वफूद भी आ रहे हैं, तहरीरी तौर पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप आ जाए, और बिल मुशाफा मुलाकात करके फिर भी कहा जा रहा है कि आप आ जाए, तो आप सोचने पर मजबूर हुए कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन आपने पहले अपने अहले बैत से मशवरा किया, उन्होंने कहा जाना मुनासिब नहीं। फिर आपने सहाबा को बुलाया, हुजूर अलैहिस्सलाम के अकाबिर सहाबा उस वक्त मौजूद थे, जिनमें हजरत जाबिर, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने उमर, हजरत अबू सईद, हजरत अबू वाकिद लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे सहाबा वहां मौजूद थे। इमाम अली मकाम ने उनको बुलाया, वो खतूत उनको दिखाए, कहा अहले कूफा मुझे बुला रहा, किस लिए? बैत के लिए। वो कहते हैं आप यहाँ पर आ जाए, हम आपके हाथ पे बैत कर लेंगे, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। अब आप मशवरा दे कि मैं क्या करूं। गौर कीजिए, जितने सहाबा थे अकाबिर जिनका मैंने नाम लिया और इसके अलावा भी थे, सबने यही कहा कि इमाम आप वहां पर ना जाए। ये सब इनके दावे जो है ना, ये जबानी का लाल, ये झूठे हैं। ये कूफा तो एक मनहूस शहर है, वहीं आपके वालिद की शहादत हुई, वहीं आपके भाई इमाम हसन पर हमला किया गया, बर्छी का वार किया गया, उनके खेमे को लूटा गया, खेमे को जलाया गया, दीगर चीजें की, ये सब इन्होंने ही तो की थी जो कूफे वाले थे। अब ये आकर अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे, अब ये आपको बैत के लिए कह रहे हैं। अगर हमसे आप मशवरा लेते हैं, हम हर चीज मशवरा नहीं देंगे कि आप वहां पर जाएं। फरमाया फिर मैं क्या करूं। बारह ऐसे बैत से मशवरा हुआ, सहाबा से हुआ, आखिर में ये तय पाया कि आप ना जाएं, पहले किसी को भेज दें, अपना सफीर बनाकर कि भाई ये आदमी आ रहा है, ये मेरा सफीर है, मेरी बैत इसके हाथ पे करो। और उस सिलसिले में हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया गया। सबने कहा ठीक है, मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप भेज दीजिए, ये कूफा पहुंच जाएं, खुद अपनी आंखों से हालात का जायजा लें, आपकी बैत लोगों से लें, हालात साजगार हो, फिर आप तशरीफ ले जाएं। लेकिन हमें अहले कूफा से वफा की उम्मीद नहीं। इमाम ने फरमाया ठीक है। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दो कमसिन बच्चों मोहम्मद और इब्राहिम, ये उनके नाम थे, इन दोनों को लेकर वो रवाना हुए और कूफा पहुंच गए। जब कूफा पहुंचे, फरमाया कि मैं इमाम हुसैन का सफीर हूं, मैं उनका इल्ची हूं, मेरे हाथ पर बैत करो इमाम। सब आ गए, सबने बैत करना शुरू कर दी, एक ने बैत की, दूसरे ने की, दस ने, बीस ने, तीस ने, चालीस ने, हजार ने, यहां तक के 18,000 आदमियों ने बैत कर दी। गौर कर, 18,000 कूफियों ने, और हर घर में उनकी दावत हो रही है, उनकी इज्जत अदब एहतराम सब कुछ हो रहा है। इमाम हुसैन के सफीर आए हैं, अहले बैत के खानदान के फर्द आए हैं, रसूलुल्लाह के अहले बैत में से हैं मुस्लिम बिन अकील वो आए हैं, जगह जगह बड़ी दावतें और बड़ी महफिलें हो रही हैं, बैत हो रही है। शायद कहता है जब मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे तो क्या हुआ, किया इजहार अरबाबे अकीदत ने मुसर्रत का, हुआ सामान घर घर खैर से मुस्लिम की दावत का, बकसरत मुस्लिम लोग आए शादमा हो कर, इमाम पाक का ये खत सुनाते तर्जमा हो कर, तरक्की रात दिन होने लगी अहले अकीदत की, हजारों कूफियों ने हजरत मुस्लिम से बैत की, मवाफिक जब भी जाए कूफा मुस्लिम को नजर आई, जमात लड़ने मरने के लिए भी मुस्तैद पाई, लिखे हालात सब मुस्लिम ने फर्ज़ंदे पैगंबर को, बुलाया जानिबे कूफा हुसैनो आने हैदर को, बुलाया जानिबे कूफा हुसैनो आले हैदर को। जाहिर है जब 18,000 ने बैत कर ली तो फिर तो जाहिर है हालात बेहतर। इमाम मुस्लिम ने खत लिख दिया इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, मैं यहां पर आया हूं, 18,000 ने बैत कर ली है। लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, घर घर दावत हो रही है, बैत हो रही है, जहाँ मैं जाता हूँ लोग बैत करते हैं, और अब तक 18,000 बैत कर चुके और अभी सिलसिले जा रही है। तो इमाम आप तशरीफ ले आए, ये खत चला गया, इधर खत गया और उधर हालात बदल गए। यजीद को ये खबर पहुंची कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला इमाम अली मकाम के सफीर बनकर कूफा पहुंच गए, 18,000 ने बैत कर दी, मजीद बैत का सिलसिला जारी है। अगर तुम्हें हुकूमत बचानी है तो अभी कोई ना कोई इकदाम करो। उसने कहा वाकई ये मामला तो खराब है, और बताने वाले ने कहा कि हुसैन भी आने वाले हैं रजी अल्लाह ताला। अब ये घबरा गया कि 18,000 ने तो अभी बैत की है, जब इमाम हुसैन तशरीफ ले आएंगे तो न जाने कितने, मेरी हुकूमत तो खत्म हो गई, हो सकता है कि ये अपनी खिलाफत का ऐलान कर दे। इसने क्या किया, इसने फौरन एक शख्स था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, जो बड़ा संदिल बहुत सख्त आदमी था, किसी की परवाह नहीं करता, उसको इसने बुलाया और उससे कहा कि देख तुझे एक काम करना है, कूफे में मुस्लिम बिन अकील हैं जो इमाम हुसैन के सफीर हैं, 18,000 ने उनके हाथ पे बैत कर ली है, ये हुकूमत ने वक्त के खिलाफ बगावत हो रही है, तुम जाओ उन लोगों को डराओ धमकाओ और इनसे रोको। उसने कहा ठीक है, ये तो कोई मसला नहीं। उसने क्या किया, हिजाजी लिबास पहना, यानी जो मदीने तैयबा के लोग मक्के मुअज्जमा की जो पहनते थे, काला अमामा सर पे बांधा, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सिया रंग का अमामा अक्सर पहनते थे, और उसके बाद अपने अहलो आयाल के साथ कूफे रवाना हुआ। फिर उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो मक्के से कूफे की तरफ आता, उसको ये पता था कि ये जितने लोग हैं इमाम के मुंतजिर हैं, मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख दिया है, तो वो ये देखना चाहता था कि लोगों की कैफियत क्या है, और दिन के बजाय रात के वक्त वो कूफे में दाखिल हुआ। कौन, इब्ने ज़ियाद, ये पहले बसरा का गवर्नर था, तो यजीद ने वहां से इसको माजूर करके कूफा भेजा, और कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर थे जो निहायत रहम दिल थे, उनको माजूर कर दिया, कहा तुम जाओ और जाकर अपने तकर्री का फरमान सुनाओ, नोमान बिन बशीर को माजूर कर दो, तुम खुद वहां बैठ जाओ, और जो जो इकदाम करना है मेरी हुकूमत को बचाने के लिए तुम्हें छुट्टी है कर सकते जो चाहो। अब इसको एक खुली छुट्टी मिल गई। अब इसमें क्या किया, जब ये रात के बाद दाखिल हुआ तो अहले कूफा तो इस इंतजार में थे कि इमाम अली मकाम आ रहे हैं, हजरत मुस्लिम ने खत लिख दिया था, उन्होंने देखा कि रात के बाद काफिला कूफे में दाखिल हुआ और एक शख्स है जो सिया अमामा बांधा है, हिजाजी लिबास है, वो समझे कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला तशरीफ ले आए, सब ने कहा मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या जिगर गोशे बतूल, जो जो भी उनको कहना था उनकी मोहब्बत में, उनके इस्तकबाल में वो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये खामोश रहा, बोला नहीं, अब जाहिर है रात का अंधेरा था, अगर बोलता तो सब समझ जाते कि ये तो इब्ने ज़ियाद है। होते होते जुलूस की सूरत में ये सीधा गवर्नर हाउस गए। अब जब ये गवर्नर हाउस गया तो वहां नोमान बिन बशीर जो उस वक्त गवर्नर थे, जिसको यजीद ने कहा था कि इनको माजूर करके मैं तुम्हें भेज रहा हूं और अपना तकर्री का ये परवाना उनको दिखा दे, उन्होंने कहा इब्ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहां ना आइए, आप यहां से चले जाइए। इसने कहा ओ बदबख्त मैं इब्ने ज़ियाद हूं। तब लोगों ने इसकी आवाज सुनी, आ रही है तो इमाम हुसैन नहीं है तो इब्ने ज़ियाद है, वो सब चले गए अपने अपने घरों में। इसने कहा दरवाजा खोलो, गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला, ये अंदर गया और इसने कहा तुम्हें माजूर कर दिया गया, यजीद ने मुझे बनाया। अब ये गवर्नर कूफा बना इब्ने ज़ियाद, और इसने क्या किया, सुबह होते ही इसने कहा जितने बड़े बड़े सरदार हैं कबाइल के उन सबको बुलाओ। सबको बुलाया गया और इसने वहां एक खिताब किया, हमें पता चला है तुम हुकूमत वक्त के खिलाफ तुम लोगों ने बगावत की है, हुसैन की तरफ से मुस्लिम बिन अकील आए हैं 18,000 ने बैत कर ली, याद रखो यजीद की फौजें शाम से रवाना हो चुकी हैं, वो यहाँ पहुंचेंगी तुम्हारे बच्चों को नेजों पर उठा दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूट लिया जाएगा, मिसमार कर दिया जाएगा, तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां उसने दी। जब धमकियां दी वो मोहब्बत करने वाले, वो पसीने की जगह खून गिराने वाले, 18,000 बैत करने वाले सब, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, जरा सी धमकियों से डर गए। अब क्या हुआ, उसने कहा इतने ज्यादा खबरदार जो अब किसी ने मुस्लिम के हाथ में बैत, और मुझे बताओ वो कहां है। उधर हजरत मुस्लिम बिन अकील जब लोगों को बुलाते तो वो गायब हो जाते, कोई इधर चले आता कोई इधर, एक वक्त में 18,000 आपके साथ और एक वक्त में कोई भी नहीं। ये उनके दावे मोहब्बत के, सब काफूर हो गए, सब खत्म हो गए। अब क्या हुआ, आप एक घर में मैसूर हो गए। एक शख्स थे उनका नाम था हानी बिन उरवा, उनके घर में थे। तो जब उनके घर में आप रहे तो वो गवर्नर हाउस भी जाते थे, इब्ने ज़ियाद से भी मिलते थे, और अपने घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छुपा के भी रखा हुआ। आपने फरमाया भाई सबने मेरा साथ छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं आप औलादे रसूल हैं आप हमारे साथ रहें। खैर वो रहते रहे। अब इब्ने ज़ियाद ने कहा जो मुस्लिम को तलाश करके लाएगा उसे एक घोड़ा एक जोड़ा दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, किसी तरह पता चले कि मुस्लिम बिन अकील कहां है। सब दौड़ पड़े। अच्छा अब हानी बिन उरवा ने आपको बिल्कुल खामोशी के साथ अपने घर में रखा हुआ। इब्ने ज़ियाद बड़ा चालाक था, उसने क्या किया, उसने एक गुलाम को बुलाया जिसका नाम था माकल, उससे कहा कि इतने हजार दिरहम मैं तुझे दे रहा हूं, तुम ऐसा करो कि मस्जिद में जाकर बैठ जाओ, मस्जिद से तुम्हें पता चल जाएगा मुस्लिम बिन अकील कहां है। उसने कहा कैसे पता चलेगा, कहां वहां जाकर बैठ जाओ, जो नमाजी आते हैं उनसे पूछ लेना, उनसे कहना मैं तो इतनी दूर से आया हूं मुल्क शाम से या फला इलाके से, मेरे पास कुछ पैसे हैं ये मुझे नजराना उनको देना है, मुझे उनकी जियारत करनी है, मुझे किसी तरह बता दो मुस्लिम बिन अकील कहां है। इसने कहा ठीक, जाकर मस्जिद में बैठ जाता, सबसे पहले जाता, सबसे आखिर में उठकर आता। इसने देखा कि एक बुजुर्ग वहां नमाज के बाद भी बैठे रहते, उनका नाम था मुस्लिम बिन औसजा, ये उनके पास पहुंच गया और जाकर उनसे कहा। वो जानते थे कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला कहां है। उन्होंने कहा कहां से आया, कि मैं मुल्क शाम से आया, मुझे पता चला है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में खानदान नबुव्वत के चश्मे चिराग यहां पर आए हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मुझे उनका कोई पता नहीं मिल रहा वो कहां है, मेरे पास ये दिरहम है ये मुझे उनको देने हैं। वो बेचारे सीधे साधे आदमी थे, उन्होंने कहा मेरे साथ आओ खामोशी से। वो लेकर हानी बिन उरवा के घर चले गए, इसने जाकर बैत कर ली और वो जो भी दिरहम थे जितने हजार हजरत मुस्लिम को पेश कर दिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने वो दिरहम एक और शख्स को दिए, कहा इससे हथियार खरीद लो, कभी मौका पड़ेगा लड़ाई का। ये सारी बातें हो गई। अब इसकी चलाकी ये थी कि सारा दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला की महफिल में रहता था, सारी बातें सुनता था, और जब रात होती थी तो इब्ने ज़ियाद को जाकर सारी जासूसी बता दिया गया। आज ये हुआ, ये मिलने के लिए आया, इसने छुप कर बैत की, इतने हजार दिरहम के हथियार खरीदे गए। इब्ने ज़ियाद ने बुलाया हानी को और आकर कहा, बुलाकर तुम हमारे साथ बगावत कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, बगावत की बात, तुमने हमारे दुश्मन को अपने घर में बिठाया है, कौन? कहा मुस्लिम बिन अकील, हमें पता चला है। वो खामोश हुए। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि उसने गुलाम को इशारा किया, वो सामने आकर खड़ा हुआ। अब जो हानी बिन उरवा ने देखा वो तो हैरान रह गए कि ये बदबख्त, इसने तो आकर मुस्लिम के हाथ में बैत की है, हजारों दिरहम दिए हैं, ये जासूस निकला। अब इनकार की गुंजाइश नहीं थी। इब्ने ज़ियाद के हाथ में एक डंडा था, उसने उनकी नाक पे मारा, नाक की हड्डी टूट गई, खून बहने लगा। और उसके बाद उनको गुस्सा आया, उन्होंने बराबर खड़े हुए एक सिपाही की तलवार छीनना चाहिए कि मैं छीन कर इब्ने ज़ियाद को मारूं। उस सिपाही ने अपना हाथ झटक दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि हमें कत्ल करना चाहता था, अब इसका खून हम पे मुबाह हो चुका है, ले जाओ इसको कत्ल कर दो। और हानी बिन उरवा को उसी जख्मी हालत में नाक की हड्डी टूटी हुई और उनके कपड़े खून से रंगीन थे, उनको शहीद कर दिया। उसके बाद उसको पता चल गया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं। आप जिस घर में थे इत्तला पहुंच गई और वहां पर इब्ने ज़ियाद ने अपने सिपाहियों को भेज दिया। जब आप बाहर निकले तलवार लेकर सिपाहियों ने मुकाबला किया, अली के शेर ने उनको जख्मी करके भगा दिया, मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जो आगे बढ़ा फिर उसको जख्मी कर दिया, भाग गए। बड़े हैरान हुए, ये अकेला आदमी और इतनी बहादुरी से ये कैसे लड़ रहा है? कहा तुम्हें पता नहीं है, ये अली की नस्ल है, ये अली का फर्जंद है, ये अली का शेर है, ऐसे नहीं होगा। एक बहुत चालाक आदमी था, उसने कहा तुम लोग ठहरो, मैं जाता। उसने जाकर कहा कि देखिए आप हजरत अली करम अल्लाह तआला वजह करीम के लखते जिगर हैं, उनकी औलाद में से हैं, नवासे रसूल हैं, आप नवासे रसूल हैं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं, तो आप क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आप थक रहे हैं? ऐसा करें ना कि आप हमारे साथ चलें, बैठकर बात कर लेते, इब्ने ज़ियाद के सामने आपको बिठा देते, आपस में जो बातचीत होगी, जो तय होगा वो हो जाएगा, तलवारें क्यों निकल आई? आप समझ तो गए कि इसकी चाल है। उसने कहा नहीं नहीं, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, मैं मेरा जिम्मा है, तलवार रख दे। आपने तलवार रख दी, उसने फौरन तलवार आपसे ले ली। फरमाया ये पहला धोखा है जो हमारे साथ हुआ। और हकीकत यही थी कि जब तलवार छिन गई तो अब आप बेबस हो गए। उसके बाद वो आपको लेकर सीधा इब्ने ज़ियाद के पास चला गया। इब्ने ज़ियाद ने बदबख्त ने आपकी शान में गुस्ताखियां की और कहा कि तुमने अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ बगावत की है, तुमने हुसैन की बैत लोगों से ली है, 18,000 आदमियों को तुमने बगावत पर उकसाया है, और इस किस्म की बातें इब्ने ज़ियाद ने की। और कहा कि ले जाओ इसको दारुल इमारत की छत पर और जाकर इसको कत्ल कर दो, और इसकी लाश को इतनी जोर से नीचे फेंको कि इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाए। फरमाया सुनो, मेरी तीन वसीयतें हैं। एक तो ये है कि मुझ पर कर्ज है, मेरी तलवार बेचकर वो कर्ज उतार दे। दूसरा ये है कि मेरी लाश को किसी मुनासिब जगह दफन कर दे। और तीसरी बात ये है, अगर हो सके तो इमाम हुसैन को लिख देना कि कूफे ना आए। हालात बदल गए, यहाँ पर ना आए, ये लोग बेवफा हो चुके हैं। उसने जब ये सुना, उसने कहा खबरदार, इसकी किसी शर्त को, किसी बात को नहीं माना जाएगा, इसकी लाश को तो हम कूफे की गलियों में घसीटेंगे, इसकी तलवार तो हम कब्जे में लेंगे, हम कौन है इसका कर्ज उतारने वाले? और हुसैन को हम इत्तला दे के ना आए, हम तो उनको बुलाना चाहते हैं और बगावत का मजा चखाना चाहते हैं, इसकी किसी बात पे अमल नहीं किया जाएगा, ले जाओ इसको दारुल इमारत की छत पर और वहां जाकर इसका सर कलम करो और इसका जिस्म जोर से जमीन पर फेंक दो, इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं और इसकी लाश को पैरों से रस्सी बांधकर कूफे की गलियों में घसीट दो, ताकि अहले कूफा देख लें कि जो खलीफा वक्त के साथ बगावत करता है उसका ये हशर हो। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु, कहा तो एक बार 18,000 आपके जानिसार थे और कहां एक भी नहीं, सब साथ छोड़ गए। आपको दारुल इमारत की छत पर ले जाया गया, फरमाया मुझे दो रकात नफिल अदा करना। उन्होंने कहा ठीक है, जल्लाद खड़ा हो गया, दो रकात नफिल अदा किए, दुआ की, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, तो जल्लाद ने कहा तुम बगावत करते हो और अब रोते हो, बागियों की यही सजा है, अब तुम मौत से डर रहे हो। फरमाया नहीं, मौत से नहीं डर रहा, मुझे तो शहादत मिल रही, मौत से नहीं डर रहा, मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि हुसैन को मैंने लिख दिया है, हालात सही है, कूफे आ जाए, मेरे साथ ये हो रहा है तो उनके साथ क्या हो। जो कुछ इमाम मुस्लिम ने कहा, शायद ने अपने अंदाज में बयान किया, उन्होंने कहा कहा मुस्लिम ने मैं रोता नहीं, रोना तो इसका है, हुसैन इब्ने अली को मैंने खत लिख कर बुलाया है, चला दुनिया से मैं, काबे से वो अब चलने वाले हैं, चला दुनिया से मैं, काबे से वो अब चलने वाले हैं, ये रोना है कि अहकाम में कज़ा कब टलने वाले हैं, ये रोना है कि अहकाम में कज़ा कब टलने वाले हैं, मुझे आता है रोना उस कयामत खेज मंजर पर, मुसीबत आएगी मेरी वजह से आने अतहर पर, मौत से नहीं डर रहा, मौत की वजह से नहीं रो रहा, सिर्फ इस वजह से रो रहा हूं कि हुसैन को मैंने खत लिखकर बुला लिया, वो आ रहे हैं, मेरे साथ ये लोग ये कर रहे हैं तो उनके साथ क्या करें, और मेरी वजह से आले अथर पर मुसीबतें आएंगी, परेशानी होगी, सिर्फ इस वजह से मैं रो रहा हूं। अभी आपने यही कुछ कहा कि जल्लाद शकीउल कल्ब इंसान आगे बढ़ा और उसने पै दर पै वार करके आपके सर को तन से जुदा कर दिया, जिसमें मुबारक को फेंक दिया गया, पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियों में घसीटा गया। इमाम आली मकाम के ये सफीर आप पर कुर्बान हो गए, जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गए। उधर इमाम आली मकाम रवाना हो गए। अच्छा, इब्ने ज़ियाद को ये पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के साथ दो फर्जंद भी थे, इनके दो कमसिन बच्चे भी थे। उसने कहा वो कहां है, पता नहीं कहां है, कहा उनको तलाश करो। उनके लिए भी इनाम रख दिया गया, जो इनको जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसको एक जोड़ा एक घोड़ा दिया जाएगा, इतने हजार दिरहम दीनार दिए जाएंगे, फना फना चीज दी जाएगी। लोग दौड़ कर, लाल की लोग गौर करो, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वाले, आले रसूल पर जान कुर्बान करने वाले, जरा सी धमकियों से बदल गए। और जब इनाम का लालच हुआ, पहले हजरत मुस्लिम बिन अकील को तना छोड़ा और अब उनके बच्चों की तलाश में लग गए कि इनको पकड़कर हम इब्ने ज़ियाद को दे दें तो हमें इनाम मिल जाए। उनका वाकया भी तफसीली है, लेकिन हम इख्तिसार के साथ बयान कर रहे हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने शहादत से कब्ल, जब आपने हालात देखे ना और पता था कि ये लोग अब मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो अपने दोनों बेटों को काजी शुरय के पास भेज दिया, आप इनकी हिफाजत करें और जिस तरह भी हो सके इन्हें मदीने तैयबा पहुंचा दें। काजी शुरय का बेटा था, उन्होंने बेटे से कहा इन दोनों को ले जाओ, रात की तारीकी में खामोशी से, किसी को पता ना चले, मदीने तैयबा जो काफिला जा रहा है उसमें सवार कर देना, काफिले के साथ कर देना, जब मदीने पहुंचेंगे वहां तो सारे मौजूद, अहले बैत भी हैं, अहले बैत के जानिसार भी हैं, मुसलमान सारे हैं। काजी फिराय का बेटा इन दोनों को लेकर चला, देखा तो काफिला नहीं आया था, खड़ा रहा काफी देर, दूर से उसको कुछ आसार नजर आए, गर्दो गुबार, रात का वक्त था इसलिए बहुत आसानी से देख नहीं सका। उसने कहा बच्चों से देखो वो सामने तुम्हें जो नजर आ रहा है ना गर्दों को बार, ये काफिला आ रहा है, ये कुछ देर यहाँ ठहरेगा उसके बाद यहाँ से मदीने तैयबा रवाना हो जाएगा, तो तुम ऐसा करना कि इस काफिले के साथ चले जाए। उन्होंने कहा ठीक है, वो इनको छोड़कर आ गया। दोनों कमसिन बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम वहां बैठे रहे, इनको कुछ गर्दो गुबार नजर आया, इन्होंने कहा हम दौड़कर चले जाएं। जब ये वहां गए वहां कुछ भी नहीं दिखा, वो गर्दो गुबार भी गायब हो गया, वो सारी चीजें गायब। अब ये परेशान तने तना खड़े हैं। फिर वहां से वापिस आए, एक दरख्त के पीछे छुप गए, बाप भी सर पे नहीं है, हालात भी पता है कि सब हमें मारने के लिए तैयार हैं, क्या करें कहां जाएं। एक लौंडी पानी भरने के लिए कुएं पर आई, देखा दो खूबसूरत हसीनो जमील बच्चे बैठे हैं। उसने कहा कौन? इन्होंने बताया मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद। तो वो जिस खातून की लौंडी थी वो मुहिब्बा अहले बैत, अहले बैत से मोहब्बत करती थी, वो इन दोनों को लेकर वहां चली गई। उन्होंने इनको नहलाया, खाना खिलाया और कहा बच्चों डरो नहीं, ये तुम्हारे मोहिब्बों का घर है, तुमसे मोहब्बत करने वाला, हम ऐसे वैसे मोहब्बत करते। अच्छा, बच्चे खुश हो गए, एक कमरा दे दिया, बच्चे कमरे में चले गए। उसका शौहर बदबख्त सारा दिन घूमता रहा, किस लिए? बच्चों को ढूंढने के लिए कि मुझे कहीं मिले तो मैं पकड़ के अपने जियाद को दे दूं, इनाम मुझे मिल जाए। थका हारा आया रात को, औरत ने सोचा कि ये बता देगा, उसको कुछ नहीं बताया, उसको खाना दिया, वो सो गया। रात को एक बच्चे ने ख्वाब देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हैं, हजरत मुस्लिम बिन अकील खड़े हैं, सरकार पूछ रहे मुस्लिम तुम आ गए, बच्चे क्यों नहीं आए? कहा हुजूर वो भी आने वाला। जैसे ही ये ख्वाब देखा, बड़े भाई की आंख खुली, उसने चीख मारी, छोटे भाई को ख्वाब सुनाया, कहा तैयार हो जाओ हमारी भी शहादत का वक्त करीब, बाबा जान हमें बुला रहे हैं। बच्चों के रोने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने बीवी से पूछा कौन है इधर? उसने नहीं बताया, वो चिराग लेकर वहां गया, देखा कि दो बच्चे हैं। तुम कौन हो? बच्चे तो समझ रहे थे हम ऐसे वैसे मोहब्बत करने वालों के घर में। उन्होंने कहा हम मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं। उसने कहा वाह, तुम्हारी तलाश में तो मैं सारा दिन घूमता रहा, दौलत मेरे घर में मौजूद है, वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे इनाम मिलेगा, घोड़ा जोड़ा और इतने हजार दिरहम। सुबह होने का इंतजार किया और तलवार ली और उनको लेकर चला। जब सुबह हुई तो क्या हुआ? जिस वक्त नमूदार हुए सुबह के आसार, फिर लेके चला है यतीमों को जफाकार, चिल्लाती चली पीछे ज़ईफ़ा जिगर अफ़कार, बिन बाप के बच्चे हैं न ज़ालिम तीने मार, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, दो फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। अरे ये हुजूर अलैहिस्सलाम के चमन के दो फूल है, बदबख्त ने छोड़ दे। कहा नहीं मुझे तो छोड़ा चाहिए, मुझे इनाम चाहिए, मैं तो सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, मुझे क्या पता कि दौलत मेरे घर में। नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनी बीवी को धक्का दिया, दोनों को लिया और नहर के किनारे चला गया। कहा अब मैं इनके सर काटूंगा, इनके तन पानी में फेंकूंगा और सर लेकर मैं अपने जियाद के पास जाऊंगा, फिर वो खुश होगा, मुझे इनाम देगा, इतने हजार मिलेंगे, इतनी दौलत मुझे मिलेगी। तलवार उसने ली और बच्चों के सामने आग। जरा सा गौर करो, मासूम बच्चे हैं, बाप का साया सर से उठ चुका है, बे यार मददगार है, ना अपना घर है ना अपना वतन है, कोई नहीं है, और सामने एक जल्लाद खड़ा है तलवार। बच्चों की क्या कैफियत होगी? शायर ने लिखा जब सामने बच्चों के आया वो सितमगार, और देखी यतीमों ने चमकती हुई तलवार, दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने गुफ्तार। کر رحم کے معصوم ہے بے قسم لا جان مظلوم ہے حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے بچوں نے بڑی آزاری کی ہمیں چھوڑ دے ہم مظلوم ہیں معصوم ہیں
اس نے کہا نہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں
اس نے بدبخت نے ان دونوں کے سر تن سے جدا کیے ان کے معصوم لاشوں کو دریا میں پھینکا اور سر اپنے اس تھیلے میں رکھ کر سیدھا ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کر کہتا ہے ابن زیاد دیکھ میں کیا دولت لے کر آیا ہوں اس نے کہا کیا لے کر آیا ہے مسلم بن عقیل کے بچوں کے سر اس نے کہا سر میں نے تو کہا تھا زندہ لے کر آنا سر کیوں لے کر آیا بھائی آپ نے کہا تھا زندہ یا مردہ کہا نہیں میں نے کہا تھا زندہ لے کر آنا تو نے معصوم بچوں کو مارا کہا اس کا بھی سر قلم کر جا کر اس کو بھی مار نہ خدائی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے خود بھی گیا جہنم میں ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دو فرزند ان دونوں کو تینوں کو شہید کر دیا گیا امام علی مقام اس تمام واقعے سے بے خبر ابھی تک کوئی خبر وہاں نہیں پہنچی آپ کوفے جانے کے لیے تیار ہوئے جب وہاں سے روانہ ہوئے اس وقت بھی اہل مکہ نے یہ کہا اہل کوفہ درہم و دینار کے بندے ہیں ان کو ذرا سی دولت دکھائی جائے گی یہ سب ان کے دعوے ختم ہو جائیں گے آپ نہیں جائیں فرمایا نہیں مسلم کا خط آ چکا ہے حالات بہتر ہیں 18,000 نے بیعت کر لی ہے اب صحابہ نے سوچا کس طرح روکیں لیکن چونکہ خط آ چکا تھا سب خاموش ہو گئے جو چیز یقینی تھی اس کے اسباب خود بخود پیدا ہونا شروع ہو گئے اور امام عالی مقام وہاں سے روانہ ہو گئے آپ نے ایک کام یہ کیا کہ آپ کے ایک ساتھی قیس بن مسحر السیداوی ان کو ایک خط دیا کہ یہ اہل کوفہ کو پہنچا تھا میرے جانے سے پہلے یہ خط وہاں پہنچا تھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ قریب میں کوفے پہنچنے والا ہوں یہ ان کا خط لے کر روانہ ہوئے حضرت قیس مسحر السیداوی لیکن وہاں تو حالات بدل چکے تھے ابن زیاد نے چاروں طرف اپنے کارندے اپنے سپاہی دوڑا دیے تھے ناکہ بندی کر دی تھی کوئی خط آئے کوئی وقت آئے کوئی بھی آدمی آئے امام حسین کی طرف سے فوراً پکڑ لیا جائے اور فوراً ہمیں اطلاع دی جائے اس کے سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا اور جب وہ خط برآمد ہوا ابن زیاد کو دکھا دیا اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے حسین روانہ ہو گئے اور آنے والے ہیں ٹھیک ہے ہم تو ان کو بلانا چاہتے ہیں ہم تو ان کو سزا دینا چاہتے ہیں اس کو قتل کر دو اس کا سر تن سے جدا کر خبردار یہ خط کسی کوفی کو دکھایا کوفے والے تو ویسے ہی غداری کر چکے تھے خیر بہرحال ان کو بھی شہید کر دیا گیا اور امام حسین کا یہ ساتھی ان کا جانسار ان پر نثار ہو گیا خط کوفے نہیں پہنچا امام علی مقام روانہ ہوئے اور مقامی بطن زی روما سے آگے نکلے وہاں ایک کنواں تھا وہاں جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن متی سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عرب کی حرمت کا نبی پاک کا اور اللہ تعالی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہاں جا رہے ہیں امام نے فرمایا کوفے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں وہ تو ایک منحوس شہر ہے آپ کے والد کو شہید کیا گیا آپ کے بھائی پر برچی سے وار کیا گیا انہیں تکلیف دی گئی یہ لوگ تو سب ایسے ہیں خدا کی قسم آپ وہاں نہ جائیں یہ سارے غدار ہیں بے وفا ہیں امام نے فرمایا نہیں اب خط آ چکا ہے مسلم کے ہاتھ پر 18,000 نے بیعت کر لی ہے اور ہم تو باقی جا رہے ہیں کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں اس پر روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی نہیں انہوں نے کوشش کی کہ آپ رک جائیں لیکن امام تو کشا اس طرف روانہ ہو رہے تھے اور آپ کی سواری آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی اہل بیت کا قافلہ آپ کے ساتھ تھا 72 نفوس قدسیہ تھے एक मकाम है मकाम सालबा। जब वहां पहुंचे तब इमाम अली मकाम को किसी ने खबर दी कि हजरत मुस्लिम बिन अकील, हानी बिन उर्वा और हजरत मुस्लिम के दो फर्जंद इन सबको शहीद कर दिया गया। हैरान हुए ये क्या हुआ? अभी तो हमें खत मिला है कि 18,000 ने बैत कर ली, हाला साजगारे हम तशरीफ ले आए और अभी खत मिलता है, इत्तला मिलती है कि उनको शहीद कर दिया गया। कहा सिर्फ शहीद नहीं, उनकी लाशों को कूफे की गलियों में घसीटे जा रहा है, हर तरफ की नाकाबंदी कर दी गई है। इमाम अली मकाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। जिसने बताया वो एक मुसाफिर था जो कूफे से आ रहा था। कहा ये मंदिर मैं खुद देख कर आ रहा, मैंने सुना नहीं, मैं वहां से होता हुआ आ रहा हूं, मैं एक मुसाफिर हूं, आप इमाम हैं, मैं कहता हूं आप वापस तशरीफ ले जाइए। शायद कहता है इमाम अली मकाम ने ये सुना, जिस दम ये सुना शान मुसाफिर की जबानी, आंखों से बहे अश्क जिगर हो गया पानी। फरमाया कि राहत में हमारी खलल आया, मंजिल पे न पहुंचे के पया में अजल आया। अभी तो हम मंजिल पे भी नहीं पहुंचे, ये हालात कैसे बदल गए? बस आपने अपने तमाम लोगों को जमा किया, अहले बैत और इसके अलावा जो जानिसार थे, फरमाया सुनो तुम हमारे साथ आए, हमारे वफादार हो, जानिसार हो, लेकिन तुमने अब सारे हालात सुन लिए। पहले खत आया था कि 18,000 ने बैत कर ली, लेकिन अभी जो मुसाफिर आया है उसने बिल्कुल ताजा हालात बताए, लिहाजा मुझे तो अब रुकना नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना है। लेकिन तुम में से जो भी है मेरी तरफ से सबको इजाजत है, जो चाहे चला जाए, कोई मलामत नहीं है। तुम ये नहीं सोचना कि मेरी वजह से तुम अपनी जान को हलाकत में डालो या मुझसे इजाजत लो जाने की, जाहिर कोई इजाजत नहीं लेगा। हालात बदल चुके हैं, हमें तो जाना है कजा और कदर के अहकाम जो नाजिल हो चुके हैं, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन मेरी तरफ से इजाजत है, अभी रात है, रात की तारीखी है, हो सकता है कि दिन में कोई जाते हुए शर्म महसूस करे कि जाता हुआ नजर आए, वो कहेगा कि इमाम ने मुझे देख लिया, अभी रात है, अंधेरा है, मेरी तरफ से इजाजत है, जो जाना चाहे चले जाए, ये कहकर आप इबादत में मसरूफ हो गए। लेकिन हुआ क्या, जब सूरज तुलू हुआ तो इमाम अली मकाम ने देखा एक भी फर्द वहां से नहीं गया, सब के सब वहां मौजूद थे। फरमाया तुम गए नहीं? कहा ऐसे वक्त में नवासे रसूल को छोड़ दें तो कयामत में हुजूर को क्या मुंह दिखाएं? सरकार फरमाएंगे मेरे शहजादों को तुमने छोड़ दिया। नहीं, इमाम हम कूफे वाले नहीं है जो हम बेवफाई करेंगे, आपका पसीना गिरेगा, खुदा की कसम अपना खून बहा देंगे, अपने खून का एक कतरा आप पर कुर्बान कर देंगे।
नारे नारे रिसालत, नारे की, नारे हैदरी, फैजान अशरफिया।
हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, जीना मरना सब आपके साथ है। आपने उनको दुआएं दी और उसके बाद दो मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी बरोज जुमेरात अपने अहलो आयाल के साथ उस मैदान में खेमा जन हो गए। अब इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि हुर बिन यजीद रियाही आपको गिरफ्तार करने के लिए आए, उन्होंने कहा आप रात की तारीखी में निकल जाएं, मैं जाकर कह दूंगा मुझे इमाम नहीं मिले। तो आपने रात को सवारियां तैयार कर ली, सारी रात सफर करते रहे, सुबह हुई तो उसी मकाम पर थे जहां से चले थे। मुसलसल सफर करने के बाद उसी मकाम पर तो एक गुजरने वाले से पूछा कि ये जगह क्या है, जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये क्या जगह है? उसने कहा करबला। जो ही लफ्ज करबला सुना फरमाया, सच फरमाया था हमारे नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हुसैन की शहादत का करबला है। अगर ये करबला है तब हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, अब तो यहीं रहना है, इसी को बसाना है, अपने खून से इस बाग को सजाना है, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले करबला में पहुंच चुके थे, खेमे लग गए। इमाम अली मकाम अपने रफ़ाक़ा के साथ अहले बैत के साथ वहां पर इकामत गुज़ी हो गए। इब्ने ज़ियाद की तरफ से अमर बिन साद ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी फ़ातह ईरान हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला उनका बेटा था। बताओ सहाबी का बेटा, लेकिन दालत में आ गई, यजीद ने उसको लालच दी अगर तू हुसैन के मुकाबले में चला जाए और जो कुछ मैं कह रहा हूं ये सब कुछ कर ले तो तुझे ओहदा दिया जाएगा, गवर्नर दी जाएगी, इनाम इकराम दिया जाएगा, दौलत दी जाएगी, न जाने क्या क्या चीजें। अब उसके सामने दोनों चीजें थी, जन्नत भी जहन्नम भी, लेकिन बदबख्त ने दुनिया को तरजीह दी। इब्ने ज़ियाद ने इसको भेजा सबसे पहले। इब्ने साद तीन मुहर्रम 61 हिजरी को 4000 का लश्कर लेकर इमाम के मुकाबले में आया। दुनिया की लालच ने उसको हुकूमत लेने पर, गवर्नरी लेने पर आमादा कर दिया। जब ये आया और करबला पहुंचा तो इसने क्या किया कि एक आदमी था अर्दा बिन कैस, उसको हुक्म दिया कि तुम जाओ और हुसैन से पूछो कि वो क्यों आए हैं, किसने उन्हें बुलाया। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊं। क्यों? का खत लिखने वालों में तो मैं भी था, जिन्होंने खत लिखे थे ना कि आप आ जाएं तो मैं भी था। अब शर्म के मारे नहीं गया, नहीं मैं तो नहीं जा सकता। इसी तरह एक और से कहा, गरज ये कि सारे वही तो थे जिन्होंने खतूत लिखे थे कि आप आ जाएं, आपके नाम पर हमारी जान कुर्बान है, माल कुर्बान है। फिर उसने इमाम अली मकाम से खुद पूछा आप क्यों आए, फरमाया हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है, हम खुद नहीं आए, इन्होंने खतूत लिखे, इन्होंने कहा कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, फासिक और फाजिर है, आप तशरीफ ले आए, हम सब आपकी बैत करेंगे, आप पर जान कुर्बान है, मान निसार है, सब कुछ है। इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े चीजें बयान की, हमने मुस्लिम बिन अकील को भेजा, 18,000 ने बैत कर दी, ये सारी बातें आपने बताई, हम खुद नहीं है, हमें तो बुलाया गया। इब्ने साद ने ये चाहा कि गुफ्तगू के जरिए मसला हल हो, तो उसने क्या किया कि इब्ने ज़ियाद को खत लिखा कि हुसैन आ गए हैं लेकिन उनको बुलाया गया है, सारे हालात लिखे, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं उनको आपके पास ले आऊं ताकि दोनों बैठकर गुफ्तगू करें, मामला हल हो। लेकिन वो नहायत बदबख्त आदमी था, उसने कहा गुफ्तगू का वक्त निकल गया, हुसैन से कोई गुफ्तगू नहीं होगी, बस एक चीज उनके सामने रखो, यजीद की बैत करें वरना सर कलर, बस जंग हो और कोई बात नहीं। अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है, फिर हम इनके बारे में सोचेंगे, और अगर नहीं करते फिर कोई बात ही नहीं, कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि इनका पानी बंद कर दो, खेमा था ना, दरियाए फरात उधर था, पानी वहां से भर भर के लाते थे, और पानी कितनी जरूरी चीज है, पीने के लिए चाहिए, नमाज के लिए, वुजू के लिए चाहिए, दीगर कामों के लिए पानी चाहिए। पहला काम उसने इब्ने ज़ियाद ने जो इब्ने साद को हुक्म दिया, हुसैन का पानी बंद कर दो, इनके साथ जितने भी लोग हैं किसी एक को पानी का एक कतरा ना दिया जाए। हाकिम का ये हुक्म था पानी बशर पिए, घोड़े पिए, ऊंट पिए, اہل ہنر بھی ہیں سب چرند و پرند بھی ہیں منع نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو
ان کو پانی نہیں دینا ہے باقی سب کو پانی کس پر پانی بن کی
جن کا نانا ساقی ہے کوثر
کس پر پانی بن کیا حسین بن علی پر اور میرا ایمان یہ کہتا ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے حسین میں یہ اختیار تھا اگر وہ دریائے فرات کا حکم دیتے بہتا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا اختیار تھا یا نہیں تھا آپ جانتے ہیں نا ایک موقع پر ایک قافلے میں پانی ختم ہو گیا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی حضور ہمارے ماں باپ قربان پانی نہیں ہے وضو کیسے کریں نماز کیسے پڑھیں فرمایا کسی کے پاس پانی ہو تو لے آؤ کہا ایک پیالہ ہے وہ پیالہ لایا گیا آقا نے رحمتوں والا ہاتھ اس میں ڈال دیا صحابہ کہتے ہیں حضور کے انگوٹھے مبارک کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اتنا پانی نکلا کہ پورا لشکر سیراب ہو گیا بعد میں پیالے میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان اشرفیہ
جن کے نانا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے
کیا ان کے نواسے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ دریائے فرات کا حکم دیتے تو بیٹھا ہوا حسین کے خیمے تک آ جاتا یقیناً ان کی یہ طاقت تھی ان کا یہ اختیار تھا وہ با اختیار نانا کے با اختیار نواسے تھے وہ چاہتے تھے یہ کر کے دکھا دیتے لیکن حسین کے بتانا چاہتے تھے اگر ظلم کرنے میں تیری مثال نہیں ہے تو صبر کرنے میں میری مثال نہیں سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی باغ پل کے ساتھ کر تو کتنا ظلم کرتا ہے حسین اتنا ہی صبر کرے پانی بند ہو گیا امام نے کچھ نہیں کہا جتنا پانی تھا کتنے دن چلتا بے چین ہیں سب بے قرار ہیں ابن سعد کو آپ نے ایک پیغام بھیجا عمر بن قرطا بن کعب انصاری اس کے ذریعے فرمایا تم جا کر اس سے یہ کہو کہ تمہارے اور میرے لشکر کے درمیان ہم ایک بات کریں گے آپس میں یعنی تمہارا لشکر ہے اور میرا تو اس کے درمیان میں ہم دونوں بات کر دیتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا ابن سعد نے کہا ٹھیک وہ چاہتا تھا کسی طرح مصالحت ہو جائے آپ نے تین شرطیں رکھی تھی ابن سعد سے فرمایا سن یا تو مجھے وہیں واپس جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں میں دوبارہ مکے چلے جاؤں یا پھر مجھے سیدھا یزید کے پاس لے چلو میں خود اس سے بات کر دوں یزید کے دربار میں میں چلے جاؤں گا میں خود بات کر دوں اور تیسری مملکت اسلامیہ کے کسی سرحدی علاقے کی طرف مجھے بھیج دو میں وہیں تبلیغ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دوں یہ میری تین شرطیں ہیں ابن زیاد کو بتا دو کوئی تین میں سے کوئی ایک مان لے معاملہ حل ہو جائے گا ہم بھی لڑائی نہیں چاہتے اس نے جب ابن زیاد کو لکھا وہ بدبخت اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا اب تو یہ نرغے میں آیا ہے اب یہ بھاگنا چاہتا ہے ہم سے ہم نہیں چھوڑیں گے صرف یزید کی بیعت کرے نہیں تو سر قلم بس ایک ہی بات اس نے رکھ لی کوئی شرط نہیں مانی جائے گی کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی کوئی مشاورت نہیں ہوگی اب عمر بن سعد جو تھا وہ مجبور ہو گئے ابن سعد بہرحال جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے اور یہ نہیں مانتے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے ہمیں ایک رات کی مہلت دو نو محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات امام علی مقام اپنے خیمے میں سر گھٹنوں پر رکھے بیٹھے ہیں ذرا سی نیند آئی سرکار کی زیارت ہوئی حسین ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں حسین صبر کرنا استقامت کے ساتھ رہنا جیسے ہی آنکھ کھلی مزید حوصلہ ہو گیا، استقامت کا پہاڑ تو ویسے ہی تھے، سمجھ گئے کہ اب شہادت قریب. اب رات ہوئی، فرمایا کہ ایسا کرو اپنے جو رفقا تھے اہل بیت کے افراد اور جو دیگر آپ کے ساتھی تھے، فرمایا آج کی آخری رات ہے، عبادت کر لو اور صبح جو ہے جمعے کا دن ہے، صبح یہ لوگ یقیناً ہم سے جنگ کریں گے اور پھر ظاہر ہے جس کے حصے میں شہادت ہے وہ شہادت اس کو ملے گی. سجدوں سے نمازوں سے یہ رفعت کی سحر ہے، رونے کی تذلل کی عبادت کی سحر ہے، ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے. صبح ہو گئی، عجیب صبح، سب کے سب شہادت کے لیے تیار، بھوکے ہیں پیاسے ہیں. امام نے جو کہا تھا آخر وقت تک اس پہ قائم رہے. حسین کا سر کٹ سکتا ہے، حسین کا ہاتھ فاتح کو فاجر کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. میں بیعت نہیں کروں گا، فرمائے اس کا تقرر ہی خلفائے راشدین کے تقرر کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ پہلی شخصی حکومت ہے، یہ فاسق اور فاجر ہے. اگر میں نے بیعت کر لی تو پھر پوری امت بیعت کر لی. ظاہر ہے وہ اس وقت روئے زمین پر ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا حسین کے ذمہ روئے زمین پر کوئی نہیں تھی. ہر طرح سے ہر فضیلت ان کو حاصل تھی، علم، تقویٰ، پرہیزگاری، فضیلت نسبی، جنت نوجوانوں کے سردار، ساری فضیلت امام علی مقام کو حاصل تھی، پوری امت ان کے پیچھے تھی. اگر وہ بیعت کر لیتے تو سب کے سب بیعت کرتے. اور پھر فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یہ ہمیشہ کے لیے جائز ہو جاتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جو رفقا تھے انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خیمے کے چاروں طرف خندق کھود کر اس میں آگ لگا دیں تاکہ یہ لوگ حملہ کریں تو پاک بیویاں بھی ہمارے ساتھ ہیں، خواتین بھی ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی ایسی غلط حرکت نہ کر سکے. چنانچہ آگ لگا دی گئی. ایک شخص تھا بدبخت جس کا نام تھا ابن حوزہ، وہ آیا گھوڑا دوڑاتا ہوا اور اس نے آ کر گستاخی کی، کہا حسین تم نے ماذا اللہ جہنم میں جانے سے پہلے ہی جہنم اپنے لیے تیار کر لیا، آگ لگا دی. آپ نے سنا، اسی وقت فرمایا ہے الہ العالمین اس بدبخت کو آگ میں جلا دے. جو ہی آپ کی زبان سے نکلا اس کا گھوڑا ایک دم اچھلا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا لیکن اس کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اسے لے کر کربلا کے میدان میں گھومتا رہا. اس کا ایک ہاتھ ایک پیر اور سر زمین سے ٹکراتے رہے، ایک پیر اس میں اٹکا رہا، یہاں تک کہ گھوڑے نے اس کو جا کر اسی آگ میں ڈالا، اسی آگ میں ڈال دیا. حسین نے بتا دیا دیکھو میرا اختیار یہ ہے، جو میری زبان سے نکلے گا وہ ہو جائے گا، لیکن مرد یہ مولا ازہ مولا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ورنہ ہم چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یزیدی فوج کے ایک افسر کا بیان ہے، ایک سپاہی کا، وہ کہتا ہے میں آگے بڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں حسین کا سر کاٹوں گا، لیکن میں نے ابن حوزہ کا حشر دیکھا، اس کا انجام دیکھا، میں پیچھے ہٹ گیا. حسین کی زبان سے تو جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ارے یہ کیسے لوگ ہیں، میں وہیں سے واپس ہو گیا، اپنے گھر پہنچ گیا. بھائی نے کہا کیا ہوا، تو تو لڑنے گیا تھا. نہیں نہیں، میں نے ایک بات ایسی دیکھی ہے، حسین کی زبان سے جو نکلا اللہ نے اسی وقت کر دیا، میں نہیں لڑوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارا اختیار بھی یہ ہے، لیکن अल्लाह की जो रजा है हम उस पर राजी हैं। फिर आपने इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी तकरीर यजीदी लश्कर के सामने फरमाई, फरमाया सुनो मुझे देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का वाहिद नवासा इस वक्त रुए जमीन पर, मैं हुसैन हूं। मेरे लिए सरकार ने फरमाया और मेरे भाई के लिए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलम जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हमें हमारे नाना ने जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया है, तुम हमारे साथ ये सुलूक कर रहे हो। इसी तरह दीगर चीजें आप बयान फरमाते रहे और फरमाया ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें बता इसलिए रहा हूँ, कल कयामत में तुम कोई उजर पेश ना कर सको कि हमें किसी ने बताया नहीं था, किसी ने समझाया नहीं, मैं इत्माम हुज्जत कर रहा हूँ, मैं सारी बातें तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन उनकी आंखें हक देखने से अंधी हो चुकी थी, उनके कान हक सुनने से बहरे हो चुके थे, उनकी ज़बानें हक बोलने से गूंगी हो चुकी थी। सुम्मम बुक्मन उम्युन बहुम ला यर्जिउ, इसका मिजाज बन चुके थे, देख रहे थे मगर उनको नजर नहीं आता था, सुन रहे थे मगर उनको सुना नहीं जाता था, और हक बोलने से तो गूंगे हो गए। आपने इत्माम हुज्जत जब किया तो उनका एक सिपाही हुर उसके दिल में अल्लाह ने डाल दी और उसके दिल में आपकी बात असर कर गई, वहां से घोड़े को दौड़ाता हुआ इमाम के लश्कर में आ गया, कहा इमाम मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा। यजीदी लश्कर ने कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो हमारा सिपाही था कि हम दुश्मनों में चला गया, आपने उसको दुआएं दी, वो आपकी तरफ से आगे बढ़ा, उन सब ने उसको घेरा और घेर कर उसी वक्त उसको खत्म कर दिया, और आपका ये जानिसार आप पर अपनी जान कुर्बान करके जन्नत अल-फिरदौस में पहुंच गया। जब उसने नारा लगाया अल्लाह अकबर का नारा लगाकर आपके लश्कर में आया, शायद कहता है ये नारा हुर का था जिस तरह फौजे शाम से निकला के देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले के देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले हजारों में बहत्तर तंते तस्लीम रज़ा वाले हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो ये सोच सकता है ना कि उनकी मदद के लिए निकले थे, शायर कहता है नहीं, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई कि ये मुश्किल कुशा थे खुद और थे मुश्किल कुशा वाले कि ये मुश्किल कुशा थे खुद और थे मुश्किल कुशा वाले हजारों में बहत्तर तन थे तस्लीम रज़ा वाले कुर्बान हो गए, अपनी जान कुर्बान कर दी और साबित कर दिया कि सच्चे जानिसार ऐसे होते हैं। जिनको थोड़ी सी धमकी दी गई, लालच दी गई, कोई लालच में आ गया, कोई धमकी में आ गया, कोई किसी चीज में आ गया और आधे रसूल का साथ छोड़ आपकी फौज के जो सुपे सालार थे वो थे हजरत अब्बास आलमदार, एक एक सिपाही और खानदान नबूवत का एक एक फर्द ऐसा था जो अपनी जगह शेर खुदा था। हजरत अली का खून उनकी रगों में दौड़ रहा और उन्होंने भूखे रहकर प्यासे रहकर जिस तरह जंग की ये साबित कर दिया कि बाकी हमारी रगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु गए और उनसे कहा मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, फरमाया हाँ मुझको रखो याद में है दर का बिसर हूँ और बाग नबुवत के शजर का मैं समर हूँ,
मैं दीदे हिम्मत के लिए नूरे नजर हूँ, प्यासा हूँ मगर साकी कौसर का पिसर हूँ। वल्लाह मेरी दर्दे तमाचा है फला का, दिल बंद हूँ मैं शेरे खुदा का। मुझे पहचानो, मैं अब्बास अलमदार हूँ, मैं शेर खुदा का फर्जंद हूँ। आपने पानी लाने की कोशिश की, रिवायत में आया कि आपने मशकीदा भर लिया, लेकिन उन बदबख्तों ने तीर चलाए, इसमें छेद कर दिया और पानी गिर गया। इसी तरह मासूम अली असगर, जो बिल्कुल मासूम कम से प्यास से बेचैन थे, उनके गले में तीर मारा गया जो हलक में लगा, एक हिक्की भी उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। हजरते अली अकबर हम शबी है मुस्तफा, सरकार के बिल्कुल चेहरे मुबारक की तरह उनका मुबारक चेहरा था, उनको शहीद किया गया। और दीकर आपके रुफका अहले बैत के, खानदान अहले बैत के अफराद और 72 नफूस कुदसिया एक एक करके सब जामे शहादत नोश कर गए। आखिर में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, तलवार ज़ुल्फ़िकार हजरत अली करम अल्लाह ताला वजह करीम की तलवार निकाली, आप उनके सामने गए और आपने फिर इमाम हुज्जत किया और उसके बाद जंग हुई। जब वो जा रहे हैं तो शायर ये कहता है कि उस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अहले जहां आज के दिन कर लो ज़ियारत, दुनिया से मोहम्मद के नवासे की है रहलत, समझो पिसरे फातिमा ज़हरा को गनीमत, ये शक्ल न आएगी नजर फिर किसी सूरत, ढूंढोगे तुम शब्बीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। देखो कौन जा रहा है, शेर खुदा का फर्जंद जा रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा जा रहा। बात सूरत आप गए, आपने इमाम हिज्जत की हुज्जत की, उनको सब बताया समझाया, लेकिन उसके बाद बिलाखिर आपने जंग की और बहादुरी के साथ जुर्रत के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। न सिर्फ ये कि आपको उन्होंने जख्मी किया, रिवायत में आता है कि जिस्मे मुबारक पर 33 जख्म नेजों के, 40 जख्म तलवारों के और आपके पैरहन में 121 तीरों के सुराख थे। यानी पूरा जिस्मे मुबारक था वो तीरों से, तलवारों से, नेजों से, बालों से छन्नी हो गया। इमाम घोड़े से नीचे गिरे, कुर्बान जाओ खुद तो नीचे गिर गए, लेकिन गिरती हुई उम्मत को उठा साबित कर दिया, हुसैन का सर कट सकता है, बातिल के सामने झुक नहीं सकता। एक बदबخت आगे बढ़ा और उसने आपके सरे अनवर को जिस्मे अक्दस से जुदा कर दिया और सर लेकर खड़ा है। कातिल तो इस तरफ को सरे पांख ले चला, तड़पा जमीन पे या बदने शाह करबला, तबले जफर बजाने लगे दुश्मन खुदा, गुल पड़ गया शहीद हुआ इब्ने मुर्तजा, खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। इमाम अली मकाम ने बेमिसाल कुर्बानी पेश की, सजदे में जब सर रखा कहा मौला तेरा करम है, हुसैन का सर झुका है तो तेरी बारगाह में झुका है, बातिल के सामने नहीं झुका। कुरान कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला, मदद चाहो सबर से और नमाज से। हुसैन की जिंदगी को देखो, सबर और नमाज यही दो चीजें नजर आती। नाना का विसाल हुआ तो सब, वालदा का विसाल हुआ तो सब, वालिद की शहादत हुई तो सब, भाई की शहादत हुई तो सब, जवान बेटा अली अकबर शहीद हुआ तो सब, मासूम बच्चा अली असगर शहीद हुआ तो सब, 72 शहीद हुए सब,
सबर करते चले आ रहे हैं, और जब खुद की शहादत हुई तो सजदे में सर है। सबर और नमाज यही हर जगह, सबर और नमाज। हुसैन ने बता दिया बातिल के सामने झुक नहीं सकता। हुसैन का सर अगर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ खालिक कायनात की बारगाह में झुकेगा। उन्होंने इसी पर बस नहीं की बल्कि घोड़े दौड़ाए। आप गौर करें कि घोड़ा अगर जिस्मों पर दौड़े तो जिस्म का क्या हशर हो। उन बदबख्तों ने घोड़े दौड़ाए। सख्त धूप है, तमादत है, गर्मी है, सूरज की किरणें उनके जिस्मों पर पड़ी हैं, उनके सर तन से जुदा कर कर नेजों पर उठा दिए। इमाम आली मकाम का सर, आपके शहजादों का, उन बहादुर नफूस कुदसिया का, उनके जिस्मों को वहीं पड़ा रहने दिया। उन पर घोड़े दौड़ा दिए और कहा कि देखो जो हुकूमत वक्त से बगावत करेगा उसका हशर यही हो। वो तो ये सोच रहे थे कि हम जीत गए, हमने माजल्ला हुसैन को खत्म कर दिया। लेकिन हुसैन ने बता दिया कि आले रसूल से जीतना आसान नहीं है, जो आले रसूल से जीतेगा वो वक्त का यजीद होगा। हुसैन ने बैत ना करके बता दिया मेरा हाथ फासिक और फाजिक के हाथ में नहीं जाएगा, सर कट जाएगा लेकिन हाथ फासिक और फाजिक के हाथ में नहीं जाएगा। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा इन सब के सर यजीद की तरफ रवाना कर, नेजों पर चढ़ा दिए गए। अहले बैत की बकिया ख्वातीन उनकी चादरें खींची गई, ऊंट की नंगी पीठों पर उन्हें बिठाया गया, घुमाया गया, लोगों को बताया गया कि देखो जो हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत करेगा उसका यह असर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करबला से जाने लगे, आपने रिक्कत अंगेज अंदाज में कुछ अशआर पढ़े, मदीने तैयबा की तरफ देखा, अपने नाना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम दिया। बादे सबा के जरिए, हवा के जरिए पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? आपने फरमाया मेरा पैगाम उस नबी मोहतरम की तरफ पहुंचा दे। कौन से नबी मोहतरम? अब उनकी सिफत बयान कर रहे हैं, फरमा रहे हैं वो नबी ऐसे हैं मन वजह हो शम्से दोहा मन खद्दहु बद्र दुजा मन वजहु शम्से दोहा मन खद्दहु बद्र दुजा मन दातहु नूरुल हुदा मन कफहु बहरिल हुमम। वो जिनका चेहरा शम्सुद्दोहा है, जिनके रुखसार बद्रुद्दुजा है, जिनकी जात नूरुल हुदा है, और उनकी हथेलियां ऐसा समंदर है जो सखावत का समंदर है जो बह रहा है। फिर आखिर में फरमाते हैं, ये कसीदा तो लंबा है, मैं सिर्फ ये तीसरे तीन शेर पेश कर रहा हूं। जब करबला से रवाना होने लगे आखिरी शेर ये पढ़ा या रहमतन लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैन आबिदीन या रहमतन लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैन आबिदीन महबूसे ऐदि ज़ालिमीन फी मौका में
والمزدحم محبوس عید ظالمین فی موقب والمزدحم.
فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زین العابدین کا ہاتھ پکڑیے حضور غم کے دریا سے نکالیے میں ظالموں کے ہاتھ میں قید ہوں محبوس عید ظالمی حضور مجھے نکال میں یہاں پر قید. امام زین العابدین نے آنسوؤں کی صورت میں یہ نذرانہ پیش کیا اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا. آج یزید کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں اس کو پتا نہیں تھا, بعد میں اس نے افسوس کیا اور اس نے کہا کہ مجھے اگر معلوم ہوتا تو میں حسین سے بات کر لیتا. حالانکہ معتبر روایت میں یہ آیا کہ جب امام علی مقام کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے چھڑی سے اس کو ہلایا, ادھر ادھر کیا جیسے کھیلتے ہیں اور کہا میں نے سنا تھا حسین بڑا خوبصورت ہے, واقعی حسین تو بڑا حسین تھا, اور کہا ان کے باپ دادا نے میرے باپ دادا سے جنگ کی تھی, آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا, آج ہم نے فلاں کا بدلہ لے لیا. اس قسم کی اس نے خرافات بکی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور سربراہ مملکت کو پتا نہ ہو؟ اس نے پہلا خط ہی یہی لکھا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور حسین بن علی ان تینوں سے میری بیعت دو, اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ سر قلم. بعد میں اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا تو کہا اپنے گھر کی عورتوں سے کہ اہل بیت کی عورتوں سے تعزیت کرو, ان کو نئی چادریں دو, ان کو نئے کپڑے دو, ان کو کھانا کھلاؤ. غور کرو جن کے رشتے داروں کے سر نیزوں پر ہوں وہ کیا کھانا کھائیں گے, وہ کیا پانی پیئیں گے؟ امام زین العابدین کی کیفیت یہ تھی جب پانی سامنے آتا تو روتے تھے, اس کی ایک ایک بوند کو علی اصغر علی اکبر ترس گئے میں کیسے پانی پیوں, جب کھانا سامنے آتا تھا تو روتے تھے میں کیسے کھانا کھاتا. میں نے کربلا کا منظر دیکھا ہے, آپ کے صاحبزادے نے پوچھا میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کہا ان آنکھوں نے میدان کربلا کا منظر دیکھا ہے, بیٹا اگر تم دیکھ لیتے تم بھی ہنسنا بھول جاتا. میں نے ایسا ظلم بربریت یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. لوگ کہتے نہیں جی وہ بے قصور تھا. ہاں ایک بات کہتے ہیں جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں, اگر کوئی آپ سے کہے کہ یزید بے قصور تھا, اگر کوئی دلائل دے کہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تھا, ہم کوئی دلیل نہیں دیتے, ہم کوئی چیز بیان نہیں کرتے, ہم صرف ایک بات کہتے ہیں اگر تم یزید کی حمایت کرتے ہو ہم تو الحمدللہ حسین کے ساتھ ہیں, اگر تم یزید کی حمایت کرتے ہو تم دعا کرو تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو, ہم دعا کرتے ہمارا حشر حسین کے ساتھ. چاہتے ہو حسین کے ساتھ حشر ہو, انشاءاللہ تعالی حسین کے ساتھ ہوں گے ان کے دانا کے جھنڈے تلے ہو. کہتے نہیں جی نہیں یہ تھا وہ تھا. امام علی مقام نے صبر اور استقامت کا پیکر بن کر بتا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین, میں اپنے پیچھے دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, وزنی چیزیں, یہ نہیں فرمایا قیمتی, اس لیے کہ ہر قیمتی چیز بھاری نہیں ہوتی. ڈالر آپ ہاتھ میں رکھیں کتنا قیمتی ہے لیکن پھونک مارو تو اڑ جائے, اسی طرح دیگر کرنسیاں قیمتی ہیں آپ ہاتھ میں رکھیں پھونک مارے تو اڑ جائیں. میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا میں قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, فرمایا تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے دوسرے میرے اہل بیت, ایک قرآن ہے دوسرے میرے اہل بیت. سرکار یہ فرمانا چاہتے تھے میں اپنے پیچھے جس کو چھوڑے جا رہا ہوں وہ اتنا وزنی ہے اتنا بھاری ہے کہ جب میدان کربلا میں کھڑا ہو جائے گا تو کیسی ہی آندھیاں چلے اسے ہلا نہیں سکیں, اسے ہلا نہیں سکیں گی, اس کے پائے استقلال میں ذرا سی جنبش نہیں ہوگی. اور وہی حسین بن علی نے کر کے دکھا دیا. آج اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں, میں صرف دو شعر بیان کر کے پھر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کون گستاخیاں کر رہا ہے؟ اہل بیت کی شان میں خارجی گستاخی کر رہے ہیں اور دیگر. اسی لیے اعلی حضرت کے برادر نے بہترین بات لکھی، فرمایا اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت۔ اب یہ کہتے ہیں جی واقعہ کیوں بیان ہو رہا ہے، یہ فلاں چیز کیوں ہے، یہ فلاں کیوں ہے، اس کا بھی جواب انہوں نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دیں اے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کربلا میں جا بجا اہل بیت اطہار کی مقدس لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ شاعر کہتا ہے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ واقعہ تو بہت طویل ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو معتبر روایات ہیں ان کو بیان کیا جائے، اور تفصیل سے ہٹ کر اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ بس آخری بات یہی ہے کہ امام عالی مقام نے جس مقصد کے لیے قربانی دی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کے لیے، اس میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا تھا اسے درست کرنے کے لیے، اگر امام بیعت کر لیتے قیامت تک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہو جاتا، لیکن امام نے گھر بھر لٹا دیا، فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، کہا حسین سر دے سکتا ہے ہاتھ نہیں دے سکتا۔ کسی نے سنا کہ یزید کے دربار میں امام کا ہاتھ گیا؟ نہیں، سر گیا، سر تو پہلے ہی دینا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد مبارک پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔